बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस पवित्र परिसर में हम लोग भगवान वेदव्यास द्वारा विरचित महाभारत के अंतर्भूत उद्योग पर्व में स्थित सनत सुजात उप पर्व पर विचार कर रहे हैं। विचार के इस क्रम में सिंहावलोकन हो रहा है पहले अध्याय का, प्रस्तावना बनाई जा रही है दूसरे अध्याय के लिए, जहां बताया गया कि हमारा स्वरूप, लेकिन फिर भी हमारा स्वरूप ढक गया है अविद्या और अविद्या के कार्य मान और मोह से, जैसे जल के ही आश्रय पर रहने वाली जो काई है, शैवाल है, उस शैवाल से जल का स्वरूप ढक जाता है और वो हरी घास की तरह दिखाई देता है। तो शैवाल को हटाने के लिए कुछ कुछ केमिकल प्रयोग करने पड़ते हैं जिससे वह जल साफ हो जाए। आजकल एक्वागार्ड लगाते हो, थ्री स्टेज है, तीन वो लगाते हैं ना, तीन सिलेंडर होता है, किसके लिए, पानी को शुद्ध करने के लिए ही, फिल्टर करने के लिए। तो हमारे अंतःकरण में जो एक अविद्या और अविद्या से उत्पन्न मान और मोह रूपी गंदगी आ गई है, तो उसको हम कैसे शुद्ध करें। शुद्ध करने के भी आप लोग जानते हैं कई तरीके हैं, फिटकरी जल है तो फिटकरी से, फटकरी नहीं हो सकता है तो कोयले से छानते हैं, ये भी तो है ना, कोयला होता है ना, कोयला, ये जो वैसे फिल्टर होते हैं उसमें कोयले डालते हैं, उस कोयले से छन करके ही पानी आता है। तीसरा एक कोई बर्तन होता है उसमें एक पत्थर डालते हैं, उस पत्थर से छन करके पानी आता है, और भी बहुत तरीके हैं। तो यहां भी सनत कुमार जी धृतराष्ट्र को कहते हैं द्वारांग सम्यक प्रवदंति संतः सम्यक द्वारांग प्रवदंति, संत लोग अच्छी प्रकार से कुछ रास्ते बताते हैं, द्वारांग माने कुछ रास्ते बताते हैं, वह रास्ते बहु प्रकारांगी अनेक प्रकार के रास्ते हैं, लेकिन बहुत सहज नहीं है। दुराचरांगी उन रास्तों को बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन उनका अनुष्ठान करना, उनको जीवन उतारना बहुत ही कठिन है। वे रास्ते कौन कौन से हैं बताया, सत्य है, सरलता है, ह्री लज्जा है, दम इंद्रियों का दमन है, निग्रह है, पवित्रता है, और ब्रह्म विद्या है। ये छह साधनों का यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में अनुष्ठान करेगा, इन छह साधनों को अपने आचरण में लाएगा, तो छह साधन मान मोह प्रतिबंधकानी, मान और मोह के प्रतिबंधक होते हैं, और जो ब्रह्म विद्या है वह अज्ञान की निवृत्ति करता है। अज्ञान की निवृत्ति हो जाने से अज्ञान का जो कार्य है मान और मोह, ये दोनों भी समाप्त हो जाते हैं। इन दोनों के समाप्त होते ही अपना स्वरूप हमें, अपने स्वरूप का हमें स्पष्ट भान हो जाता है। कल चिंतन किया गया, देखो तो बहुत शास्त्र हैं, इन हर शास्त्र का सार एक ही है। अष्टावक्र का उदाहरण लिया, अष्टावक्र गीता का, वहां भी यही अष्टावक्र ने कहा जनक के प्रति, मुक्तिम इच्छसि चेत तात विषयान विश्वत्यज, हे तात यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो तुम्हें एक काम तो करना ही पड़ेगा, विषयों को विष की तरह छोड़ना है। और कल बताया गया, इस पर विस्तार से चर्चा हुई, ये पांच विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। तो पहले एक एक किले को फतह करना है, एक एक किले को जीतना है, तो पहले गंध को जीतो, गंध के बाद रस को जीतो, क्योंकि रस में ध्यान देना, स्वाद बुद्धि रहेगी तो स्वास्थ्य बुद्धि समाप्त हो जाएगी, और स्वास्थ्य बुद्धि आ जाएगी ना तो स्वाद बुद्धि समाप्त हो जाएगी। तो जब भी भोजन करो तो इसमें कौन सी बुद्धि रखना है, स्वास्थ्य बुद्धि रखोगे तो अपने आप स्वाद को आप जीत लोगे, और जब तक स्वास्थ्य बुद्धि नहीं रहेगी ना तब तक स्वाद के पीछे पागल रहेंगे। और आजकल तो बहुत डिशें आ गई हैं, इतना तो नाम हमें नहीं जानते हैं, मैगी पिज्जा बर्गर माइक्रोनी मंचूरियन और क्या है भाई, बहुत है, हमें इतना नहीं हुआ तो बहुत कुछ। ये किसके पीछे हम पागल हुए हैं, स्वाद के पीछे, इनसे स्वास्थ्य नहीं है स्वाद है। चलो इससे ऊपर जाएंगे तो रूप आएगा, रूप को भी जीतो, रूप के बाद आएगा स्पर्श, स्पर्श को भी जीतो, इसके बाद आएगा शब्द, तब जाकर के हमारा कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण होने वाला है ही नहीं। ये सब जीतने के इसमें बड़े तरीके बताए गए हैं भाई। कोई व्यक्ति आपका सम्मान करे अथवा आपका अपमान करे, इन दोनों अवस्थाओं में सम रह जाएं, शांत रह जाएं, इसका मतलब आपने शब्द को जीत लिया है। तो उस समय व्यक्ति कई क्या विचार करे साधक है, तो कहा लोक स्वभाव वृत्ति ही निमेश उन्मेष वत सदा विद्वांसो मानयंती है इति मन्नेत मानित। विद्वान लोगों को इस संसार में यदि कोई सम्मान देता है तो वही समझते हैं संसार की प्रकृति है, एक संसार का स्वभाव है। ध्यान देना, एक वृक्ष जमीन के ऊपर नित्से ऐसा बोलते हैं, जर्मन के दार्शनिक हुए हैं, जमीन एक वृक्ष जमीन के ऊपर जितनी मात्रा में फैलता है उस वृक्ष की जड़ें जमीन के भीतर उतनी ही मात्रा में नीचे गहरी वे भी फैलती हैं। ते संसार का एक स्वभाव है, नेचर है। यदि आपके 10 लोग क्या हैं, प्रशंसक हैं, तो आपके निंदक भी कितने होंगे, नहीं 10 ही होंगे, ज्यादा क्यों कह रहे भाई। यदि आपके 1000 प्रशंसक हैं तो आपके निंदक भी 1000 होंगे। कि हमारा प्रशंसक कोई नहीं है, हमें दुनिया में कोई जानता भी नहीं है, तो मेरी निंदा करने वाला भी कोई नहीं होगा। तो प्लस और माइनस सबका क्या है, इक्वल ही है। इसलिए प्रशंसा में कभी फूले नहीं, बल्कि कोई प्रशंसा करे तो यह सोचना कि भाई मैं प्रशंसा के योग्य नहीं हूं, ये तो आप की अच्छाई है, ये तो आपकी महानता है कि आप मेरे में अच्छाई देख रहे हो, लेकिन अच्छाई मेरे में नहीं है। उसी प्रकार से यदि कोई बुराई करे तो अवमानित है, संसार से भी अपमानित तो होवे, तो उस समय उसकी नादानी पे तरस आना चाहिए। अधर्म जिसो, बेचारे को धर्म का ज्ञान है ही नहीं। शास्त्र विवर्जिता, शास्त्रों का महापुरुषों का इसने साथ किया नहीं, यदि साथ किया होता तो कभी किसी का अपमान नहीं करता। तो ऐसा अवमानित होकर के वह विचार करता है, और विचार करने के अनंतर उसके अपमानित होने पर वह दुखी नहीं होता है, बल्कि अपमान करने वाले के प्रति उसके मन में तरस आता है। भाई यदि अपमान भी कर रहा किसका कर रहा है, अपना ही अपमान कर रहा, लेकिन उसको बोध है ही नहीं। इस तरह से शब्द को हमें जीतना है। और कल किन किन महापुरुषों ने किन किन विषयों को जीता, कैसे जीता, कौन कौन से महापुरुष किस विषय में डूब गए और समाप्त हो गए, उनका अस्तित्व मिट गया, ये सब आपसे कल चर्चा हो गई। एक तो परहेज है विषयों को छोड़ना, लेकिन जीवन में लाना क्या है? विषयान विश्वतर क्षमा, जीवन लाना क्या है? क्षमा, आजव, सरलता, दया और तोष, संतोष। इन चार को जीवन उतारो, आपको मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। ये चार चीज नहीं आएंगी तो भाई मुक्ति कहने की बात है, लेकिन जीवन उतार, यही बात योग वासिष्ठ में बताई गई है। योग वासिष्ठ में मोक्ष द्वारे द्वारपाला चत्वारह परिकीर्तिता, मोक्ष के द्वार पर चार द्वारपाल हैं। मोक्ष रूपी जो महल है, उस मोक्ष रूपी महल में भी हमें घुसना है तो वहां चार प्रकार के द्वारपाल हैं। वे द्वारपालों से होकर, उन दरवाजों से होकर के गुजरना पड़ेगा, तभी आप मोक्ष रूपी महल में प्रवेश कर सकते हो। वे द्वारपाल कौन से हैं? समो, विचार है, संतोष है, चतुर्थ है, साधु संगम है। क्या है? पहला है शम, मन का निग्रह है। अब मन का निग्रह भी कहां से करना है? संसार के विषयों से, भोगों से, पदार्थों से मन को हमें डाइवर्ट बदलना है, उनकी बहिर्मुखता को अंतर्मुख बनाना है, इसका नाम है श्रम। अब मूंग श्रम आजकल तो करते तो हैं, बाबा लोगों को भी मैंने देखा गंगा जी किनारे चीलम लगा करके जो वहां रहते हैं सड़क किनारे, तो श्रम तो कर लिया उन्होंने अनात्म जगत से, अपनी दौड़ को तो किसी न किसी माध्यम से रोक तो लिया, लेकिन मूंग हो गए। ऐसी नशे में चूर होकर के वे क्या हो गए? मूंग हो गए। उनके अंदर विचार करने की शक्ति ही समाप्त हो गई। तो दूसरा साधन बताया विचार है। जब तक शम नहीं होगा ना, तब तक हम विचार करेंगे नहीं, और विचार करेंगे भी ना तो अनात्म जगत का ही विचार करेंगे, इदम जगत का ही विचार करेंगे। और जिस क्षण आपके चित्त में अंतर्मुखता आ जाएगी, चित्त बाहर के विषयों की दौड़ को रोक देगा, उस क्षण आप विचार जो करोगे ना, अपने स्वरूप का विचार करोगे। तो दूसरा है विचार है, तीसरा है संतोष है, तीसरा साधन क्या है? सही बताऊं, आज हम विचार भी करते हैं, थोड़ा बहुत श्रम भी है, लेकिन संतोष है, बहुत दौड़ है। अब पता नहीं ये दौड़ किस लिए है, अब कितना भी इकट्ठा कर लोगे कभी तृप्ति होगी क्या बताओ? हमें तो लगता भोग से, ऐश्वर्य से, पद से आज तक कभी कोई व्यक्ति तृप्त हुआ ही नहीं है, तो हम सब कैसे तृप्त होंगे? सिकंदर आए, पूरे विश्व को जीतने का एक ख्वाब लेकर के, सपना लेकर के, लेकिन उनका ये ख्वाब
ख्वाब ही रह गया।
एक सपना तो सही बताओ, एक सपना सपना ही रह जाता है। आप देखना, आप लोग कथा के माध्यम से सुनते होंगे, जब मोहिनी रूप परमात्मा ने प्रकट किया, एक कथा सुना ने सुना है, भगवान शंकर जी ने नारायण से कहा कि प्रभु आपके सारे अवतारों को हमने साक्षात्कार किए हैं, बस एक अवतार मैंने आपका देखा नहीं। कौन सा रूप? मोहिनी रूप। आप मेरे को दिखाओ। तो शंकर जी ओ नारायण ने कहा एक कामियों का रूप था, कामी लोगों को ठगने का, छलने का, उनको धोखा देने के लिए मैंने ये रूप रचा हुआ था। आप जैसे ब्रह्मज्ञानियों के लिए ना ये रूप देखना उचित नहीं है, लेकिन जानते हो जिद तो जिद, शंकर जी ने जिद कर लिया। नहीं नहीं, जब सब देखा है तो इसको भी देखूंगा देखूंगा। कहा आप मत देखो, मानो, लेकिन जब नहीं माने तो कहा चलो एक झलक एक नमूना दिखाई देते हैं। भागवत आदि कथाओं में तो बड़ा रोचक, आपके मन को समाहित करने के लिए इस कथा का बड़ा रोचक अंश लेते हैं कि एक नायिका सी दिख गई, हवा बहना शुरू हो गए, हवा के वेग से थोड़ा उसके सर से पल्लू नीचे गिर गया, गेंद खेलना शुरू कर दी, इस तरह से वहां ऐसा एक रूपक बनाया। ये और कोई नहीं है भगवान का मोहिनी रूप, ध्यान देना, ये संसार ही भगवान का मोहिनी अवतार है, ध्यान देना। भगवान के सारे अवतार आकर के चले गए, समाप्त हो गए। राम रूप में आए, राम ने शरीर का क्या किया? त्याग कर दिया। कृष्ण रूप में आए, शरीर का त्याग हुआ। और भी रूप आए, सब चले गए, एक निश्चित प्रयोजन के लिए आया। लेकिन भगवान का मोहिनी रूप जो था ना, आज भी विद्यमान है। तो मोहिनी रूप कौन है? भगवान का मोहिनी रूप है यह संसार ही भगवान का मोहिनी रूप है, वह रूप आज भी विद्यमान है, जो हर व्यक्ति को अपने मोह में उलझाया है, फंसाया हुआ है। और इस मोहिनी रूप से बगे बगे यति वृंद भी छूटे, शंकर जैसा जो हमेशा ब्रह्म विद्या के साथ ही रहता है, रहते हैं। शंकर जी के पास कौन है? उमा है ना? उमा कौन है? ब्रह्म विद्या के साथ रहते हैं, लेकिन जैसे ही मोहिनी रूप देखा तो उन्हें ब्रह्म विद्या याद रही कि भूल गए? और किसके पीछे पागल हुए? मोहिनी के पीछे दौड़ लिए, ब्रह्म विद्या यही की यही खड़ी रह गई। उमा की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, उमा यही खड़ी रही। शिव भी किसके पीछे दौड़े? ब्रह्म विद्या, ओ माया, मोहिनी के पीछे दौड़े। अब लगा अब मोहिनी पकड़े में आई, अब मोहिनी पकड़े में आई, अब मोहिनी पकड़े में आई, लेकिन आज तक यह मोहिनी कभी किसी की पकड़े में आई ही नहीं है। तो बताओ, जब शंकर भी उस मोहिनी को नहीं पकड़ पाए, तो इस संसार को हम पकड़ना चाहें तो संसार कभी पकड़े में आने वाला है क्या भाई? लेकिन बस पकड़ ही रहे हैं। कभी कभी लगता दादाजी भी चले गए पकड़ते पकड़ते, पिताजी भी चले गए, हम भी जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन संसार तो आज तक कभी किसी के पकड़ में, संसार की दौड़ तो कभी आज तक कभी किसी की शांत। लेकिन भगवान शिव में, शंकर में एक विशेषता थी कि मोहिनी के पीछे दौड़े तो कहते जिसे पकड़ने वाले हुए ऐसे कुछ हुआ उनका, होने के बाद वो अपने स्वरूप में फिर आ गए। अपने स्वरूप में भगवान शंकर फिर से वापस आ गए, तो उसमें नारायण प्रशंसा करते हैं कि हे शिव, आप जैसा योगी ही इस संसार की मोहिनी के दौड़ में दौड़ करके वापस आ सकता है। नहीं तो भाई, संसार ऐसा भूल भुलैया है, एक बार संसार की भूल भुलैया में घुसे तो फिर वापस आने का कोई रास्ता? लखनऊ में भूल भुलैया देखा नहीं? देखा लोगों ने? एक बार ये सही बताओ, संसार की भूल भुलैया में भटके तो फिर वापस आने का कई लोग हमसे कहते हैं महाराज जी बहू आ जाएगी तो कथा में आएंगे, बेटे की शादी हो जाए तो कथा में आएंगे, फिर साधना कर लेंगे। अच्छा जितना वो रास्ता भटकता जाता है उतना ही उस कथाओं से सत्संग से उतना ही दूर होता चला जाता है, फिर वापस आने का रास्ता उसको मिलता ही नहीं है। तो भाई तीसरा ये लाओ, संतोष लाओ। 50 कपड़े हैं, पहने हुए कितने कपड़े, 1000 मकान हो गए, रहोगे कितने घर में, एक घर में एक कमरा, एक कमरे में एक तख्त है, वही मेरा अपना बिस्तर है। 56 प्रकार का भोग बना दोगे, खाओगे कितनी रोटी, तो क्या किस लिए। इसलिए मेरे भाई बार बार संतोष बहुत आवश्यक है। चतुर्थ साधु संगम है, चौथा जो साधन है वह साधु संगम है। साधुओं का क्या करना, साथ करना, इसके बिना भी कल्याण होने वाला। आप सोचो मुक्ति हमें घर में अपने आप ही मिल जाएगी, अरे भाई देखो अपने आप पढ़ने का एक साधन है। जब आपको साधु न मिले तो भाई देखो दो प्रकार की स्कूल हैं, एक प्राइवेट और दूसरा गवर्नमेंट। एक करेस्पॉन्डेंस कोर्स करता है, एक रेगुलर कोर्स करता है। आपके यहां यदि नौकरी वाला कोई व्यक्ति आएगा तो आप किसको प्रिफर करोगे, रेगुलर वाले को करोगे ना। यदि उसकी कोई मजबूरी है, रेगुलर नहीं जा सकता है, तो चल भाई क्या कर लो, तो घर में बैठ करके अपने आप स्वाध्याय चिंतन करना है, समझना करेस्पॉन्डेंस कोर्स है। लेकिन प्रेमपुरी में आकर के संतों के साथ बैठ करके स्वाध्याय चिंतन करना है, कौन सा कोर्स है, रेगुलर कोर्स है। तो आप लोग तो कहोगे हम रेगुलर नहीं चाहिए, हमें तो क्या है भाई, वो तो मजबूरी है। जब नहीं आए कार कोर्स चलने लगा है, हम अभी गए थे उधर साइड में इलाहाबाद साइड में, उधर एक स्कूल ऐसे खुल गए हैं, ग्रेजुएशन स्कूल है। आप केवल नाम लिखा दो, शिक्षा का स्तर कितना नीचे गिर गया है आपको बताऊं, नाम लिखा दो, कॉलेज में कोई पढ़ाई नहीं होती है। उन्होंने गारंटी ले लिया है कि 65% की डिग्री आपके हाथ में दे दी जाएगी, बस चाहे बीएससी की चाहे बीए की जो डिग्री लेना है आपको 65%। आप यहां से भी करना हो तो आप करवा सकता, नाम क्यों लिखाना आपको कॉलेज में, 6700 कितना फीस है, इतना फीस जमा कर दो, और एक साल के बाद उन्होंने इतनी गारंटी भी दे दिया 65% आपको परसेंटेज की डिग्री आपको मिल जाएगी, और लीगल डिग्री, कोई फर्जी नहीं। आपको एग्जाम देने की आवश्यकता, आपके लिए कोई दूसरा एग्जाम दे देगा, और क्या, या आपकी जगह बोर्ड ब्लैक बोर्ड में लिखवा देंगे, वो भी नहीं आएगा। हमने कहा मान लो कोई ऐसा निशान है, डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला निशान ही बनाना नहीं आएगा, तो कहा दूसरा बैठवा देंगे, टीचर लिख देगा, लेकिन आपको बस वो करना है। ऐसे हम देख के आए हैं कॉलेज बता रहा हूं। अब बताओ उसके पास डिग्री तो है लेकिन ज्ञान, ऐसे हम कई लोग हैं डिग्री वाले हो जाते हैं लेकिन हमारे पास ज्ञान नाम की कोई चीज है। संसार में झूठी डिग्रियों की पूजा तो कर लेते हैं लेकिन अंदर से हमारी निष्ठा एकदम जीरो होती है, अंदर से हमें उस स्वरूप का जरा सा भी ज्ञान होता ही नहीं है। इसलिए चौथा है साधु संगम। मेरे भाई थोड़ा साधुओं का क्या करना है, आज हम दुनिया का साथ कर सकते हैं लेकिन साधुओं का साथ नहीं करेंगे, सबसे बड़ी हमारी समस्या है। आज माँ बाप अपने बच्चे को चोरों के बीच में बैठा देगी, क्लब में बैठा देगी, पार्टियों में बैठा देगी, इन साधुओं के साथ बैठने के लिए बच्चा आवे तो ना बाबा बाबाओं के चक्कर मत फंसना। अब बाबाओं का उपयोग संसार के लोगों ने डरवाने के काम में लेना शुरू कर दिया। हम एक दो घरों में गए, महाराज आप हैं ना तो आप यही रहा करो, उनका क्यों भाई, तो कहा आप हो तो बच्चा चुपचाप दूध पी लेता है, नहीं तो उसको दूध पीने के लिए 10 बार नानुकूल करना पड़ता डर के मारे, क्योंकि उन्होंने पकड़ा यदि दूध नहीं पिया तो मैं बाबा को भी दे दूंगी, झोला में बांध करके ले जाएगा। सब बाबाओं को लोग डरवाने के काम के लिए प्रयोग करना शुरू कर दिए हैं। अब बताओ बच्चे के भीतर जब ऐसा संस्कार बन जाएगा तो कभी वो कभी किसी साधु के पास बैठने का संकल्प उठेगा क्या? एक बार मैं आगरा में जा रहा था, ऐसे कहीं भोजन करके निकल रहा था, तो एक स्कूल था, स्कूल की मैडम ने 22-24 साल की होगी बुलाया कि बाबा साधु बाबा जरा सुनना, तो ऐसे साधु बाबा जरा सुनना। हमने कहा लग रहा है संस्कारी लड़की है, कुछ है मेरे से पूछना चाहती है या स्कूल है तो बच्चों को कुछ न कुछ उपदेश देना दिलवाना चाहती है कि बच्चों को थोड़ा 10 मिनट आप उपदेश दो। तो मैं तो चला गया बड़े शान से, इसका कहा अब आप जाओ। हमने कहा फिर बुलाया क्यों था? तो कहा बच्चे शोर मचा रहे थे इसलिए मैंने आपको बुलाया था। बच्चे बहुत कोलाहल मचा रहे थे, शोर मचा रहे थे इसलिए मैंने आपको बुलाया था। आपके आने से बच्चों ने क्या किया? चुप हो गए। अब बताओ बाबाओं का उपयोग कहां लोगों ने करना शुरू कर दिया? अभी मैं गांव तरफ गया था, वहां 7-8 दिन कथा किया, तो वहां लोग दीदियों को ब्लैकमेल करने के लिए बाबाओं का उपयोग कर रहे थे। तुम्हारी बात मानना है स्वामी जी साथ मैं चला जाऊंगा। बच्चा कह रहा मम्मी मैं स्वामी जी साथ जा रहा हूं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो भाई महात्माओं के पास जाओ, साध संगम श्रद्धा से युक्त तो होकर के पूछो को हम, मैं कौन हूं, ईश्वर कौन है, ये संसार क्या है, ईश्वर और हमारे बीच में क्या संबंध है, जगत क्या सुख का साधन है अथवा दुख का साधन है, अथवा ये जगत की वास्तविकता क्या है, ये सब पूछो। लेकिन हम ये सब न पूछ करके बाबा बुखार आ रहा है झाड़ दो, मेरी भैंस नहीं दूध दे रही उसको झाड़ दो, बाबाओं का उपयोग हम कहां कर रहे हैं मेरे भाई? कहते यही 4 उपाय हैं, ध्यान देना कौन कौन, संतोष, दूसरा इस लोगों ने बता साधु संगस्य विचारो अथ समस्त था, संतोष साधुओं का समागम विचार सम, एत एव भवाम्बोधौ उपायो तरणे निराम, ये संसार रूपी सागर से पार जाने का यही 4 उपाय हैं, इन 4 उपायों से ही हम संसार से पार जा सकते हैं। ये 4 उपाय क्या क्या करते हैं तो वहां ही बताया योगवासिष्ठ में ही। संतोषो परमो लाभ है, संतोष जो होती परम उपलब्धि है। सत्संग परमागति, जो साधुओं के साथ रह करके जो हम सत्संग सुनते हैं, सत्संग से हमारी उत्कृष्ट गति होती है, हम विषयोन्मुख मार्ग से हट करके प्रिय मार्ग से हट करके श्रेय मार्ग पर चलना आरंभ करते हैं सत्संग के द्वारा। विचार परमम ज्ञानम, यदि विचार करोगे तो आपको उत्कृष्ट ज्ञान की प्राप्ति होगी। किस विषय का ज्ञान होगा? वही मैं कौन हूं, ईश्वर कौन है, हमारे और ईश्वर के बीच में संबंध क्या है, इदंतया जो जगत दिखाई दे रहा है उस जगत की वास्तविकता क्या है। जब इसका ज्ञान हो जाएगा, जगत के स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा और अपनी सुख रूपता का, चैतन्य रूपता का ज्ञान हो जाएगा तो सम आप पूरी तरह शांत हो जाओगे और इस मन की शांति में ही परमम सुखम, इसलिए समो ही परमम सुखम, जो सम है वही सबसे उत्कृष्ट सुख है, इन सब सुखों की प्राप्ति आपको हो जाएगी। लेकिन मेरे भाई इन साधनों का जीवन में अनुष्ठान करना है। अब हम आरंभ करते हैं दूसरा अध्याय। पहले अध्याय में मौन की बड़ी व्याख्या किया गया, मौन की बहुत ही ज्यादा प्रशंसा किया गया। न वैमानम च मौनम च सहितो बसता सदा। मान और मौन एक साथ रहते नहीं है। ये संसार जो है ना मान का विषय है और मौन है परमात्मा का विषय है। यहां तक ही बताया कि जो मान के साथ रहता है, मान अर्थ संभाषात, जो मान के साथ रहता है श्रीर ही माने निश्चयन श्रीर, उसको श्री की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। लेकिन वह लक्ष्मी परिपंथनी कुमार्ग पर ले जाने वाली होती है। ऐसे व्यक्तियों के लिए ब्राह्मी श्री जो मुक्ति रूपी लक्ष्मी है सुदुर्लभा, बहुत ही दुर्लभ होती है। विद्याहीनेन ऐसे नासमझ व्यक्ति को यह ब्राह्मी लक्ष्मी की प्राप्ति होती नहीं है। सत्य आदि की प्रशंसा किया तो प्रशंसा जब सुना तो धृतराष्ट्र के मन में इस मौन के विषय में एक प्रश्न उठ गया, क्योंकि हमें भी मौन में ही तो रहना है। हमें कहां रहना है? मौन में ही रहना है भाई। दो चीजें हैं, मान और मोह। तो मान तो परिपंथ मतलब कुमार पर ले जाने वाला है, मान का विषय संसार है। तो मौन का जो विषय है वह है मुक्ति रूपी लक्ष्मी ब्राह्मी श्री। और यदि उस लक्ष्मी के साथ यदि हम रह गए तो हमें शाश्वत शांति की प्राप्ति होगी। तो यह मौन क्या है, इसके लिए पहला श्लोक आता है दूसरे अध्याय का। धृतराष्ट्र उवाच, बोलना, कशेष मौन कतरन्नु मौनम प्रब्रूहि विद्वान इह मौन भावम। कशेष मौन कतरन्नु मौनम प्रब्रूहि विद्वान इह मौन भावम। मौनेन विद्वान उतयाति मौनम कथम मुने मौनमिहाचरन्ति। मौनेन विद्वान उतयाति मौनम कथम मुने मौनमिहाचरन्ति। कस्य एष मौनः, एष मौनः यह मौन किस प्रयोजन, कस्य प्रयोजनस्य अर्थे, किस प्रयोजन के लिए यह मौन है। हम ऐसा मौन रहें जिस मौन की आप चर्चा कर रहे हैं, किस मौन से हमें कौन सा प्रयोजन मिल जाएगा? कुछ मिलेगा कि इसे मौन रह जाएं? बोलो भाई, मौन से कुछ मिलने वाला भी है कि फालतू की साधना है? और सही बताऊं, जगत में भी मैं आपको बताता हूं, जगत की जो भी परिस्थितियां आती हैं ना आपके सामने, कई ऐसी परिस्थितियां आती हैं, उन परिस्थितियों में मौन हो जाओ ना तो मौन से भी उन परिस्थितियों का समाधान हो जाता है। हम लोग भी कम नहीं हैं, बोले बिना रहते ही नहीं हैं। अरे मौन भी एक बहुत बड़ी साधना है, चुप रहना भी एक बहुत बड़ा क्या है, बल है। कई झगड़ों को शांत करने में चुप रहना भी क्या है, साधक है। लेकिन हम लोग वही है, बोलते रहेंगे पर सफाई देते हैं। अरे आप मत सफाई दो, एक न एक दिन आप मौन रहोगे ना तो आपकी अंत स्थिति का ज्ञान बोलने वाले के एक दिन हो ही जाएगा। चाहे घर में बहू बच्चों का होवे, चाहे बाप बेटे का होवे, चाहे भाई भाई का विध्वंस, मौन हो जाओ। नहीं आप भी उसकी तरह जवाब दे दिए तो आप में उसमें अंतर क्या रह गया बताओ? एक शराबी है, शराब पिए हुए कुछ न कुछ बोल रहा है, आप भी उस शराबी की तरह उसी की भाषा में उसको बोलना शुरू कर दो तो आप में और उसमें कुछ अंतर रहेगा। बोलो भाई, ऐसे संसार शराबी है, वो तो शराब के नशे में चूर है, हम लोग धन के मद में चूर हैं, विषयों के मद में चूर हैं, भोगों के मद में चूर हैं, और दूसरे का हम अपमान कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं। तो चिंता मत करना, मौन हो जाना, उसको बोलने देना। ये नशा सबका उतरा है, आज तक रामगढ़ का नशा था वो भी उतर गया। कितना बड़ा ऐश्वर्य, कितना बड़ा धन, कितना बड़ा बल है। रूप का भी नशा एक न एक दिन रूप का नशा उतार देता है। कौन उतारता है? बुढ़ापा उतार देता है। जिस रूप को लोग छूने के लिए तरसते थे। कभी आप अपनी तस्वीर देखना है, सोना नहीं भाई, बोलो सच्चिदानंद भगवान की झपकी लोग ले रहे हैं भाई। इतना कठिन तो नहीं हो रहा ना कथा भाई। जिस रूप को युवावस्था में, जिस रूप को छूने, अपनी बचपने की तस्वीर आप देखना, आज अपनी तस्वीर को देखना, दोनों को सामने रख करके, जिस रूप को छूने के लिए लोग तरसते थे, जिस रूप को एक पल देखने देख करके अपने आप को कृतकृत्य समझ लेते थे, आज वही रूप वाला बगल में बैठ जाता है ना, तो क्या बोलते हैं, कहां से बुढ़िया बैठ गई चिपक करके, दूर हट, कहां वह रूप गया? तो रूप भी चला गया, रूप भी समाप्त हो गया, बुढ़ापे ने उसको भी क्या किया, नष्ट कर दिया। अरे जिस विद्वता का अभिमान करते हो, वो विद्वता भी हमने ऐसे ऐसे, हमारे अभी गए थे किसी गांव में, एक मास्टर जी थे, पढ़ाते थे, उनको सब कुछ भूल गया। अभी खाना खाया, वो भी भूल गया मैंने खाना खाया, प्रसाद दिया भूल गया अभी हमें आपने दिए नहीं प्रसाद है, कहीं कपड़ा पहनना ही भूल जाते हैं, ऐसे निकल लेते हैं, रिटायर हो गए हैं, इन्हें भी भूल गया कि मैं कपड़ा पहना हूं, अपना कपड़ा नहीं पहना हूं, ये भी भूल जाता उनको, कहां वह विद्वता गई। इसलिए मेरे भाई मौन हो जाओ, ये समय परिस्थिति वक्त सबको उत्तर दे देगा, आप उसको उत्तर दे मत दो, आप क्या हो जाओ, मौन हो जाओ। तो यहां बताया गया मौन का क्या प्रयोजन है, किसलिए व्यक्ति मौन रहता है। अब मौन भी दो तरह का है, एक प्रश्न ध्यान देना, दूसरा प्रश्न है कतरन्नु मौन है। मौन दो प्रकार का है, आप लोग मानते ही मानते हो, एक है संसार में जो प्रसिद्ध है वांग नियमों वा, वांगी का संयम, इसका नाम क्या है, मौन है। और दूसरा मौन है कैवल्य, हाँ निधिध्यासन वाला मौन, कि अंदर से बोलने की कोई वृत्ति उठे ही न, ओ मौन। इन दोनों मौनों में आप किस मौन की बात करते हो, कौन सा मौन चाहिए? अंदर का मौन हो, ठीक है न। बांगी का मौन तो ठीक है, बांगी का मौन साधन बन सकता है, लेकिन हमें, हमारा लक्ष्य कौन सा है, अंदर का मौन चाहिए। प्रभुही विद्वान यह मौन भावम, यह माने अस्मिन संसारे, हे विद्वान आप बोलिए, निसंकोच बोलिए, मौन भावम। मौन का स्वरूप क्या है, मौन भाव किसको कहते हैं, निर्विकल्प अवस्था में स्थित होना, ये इसका क्या स्वरूप है, इसका मौन भाव क्या है। मौनेन विद्वान उतयाति मौनम, वाणी के मौन के द्वारा विद्वान उस मौन को कैसे प्राप्त करता है, इंद्रियों का उपराम करके उस मौन को, निर्विकल्प समाधि को विद्वान कैसे प्राप्त करता है। मुनेह मौनम यह कथम आचरंती, मुनि लोग, मननशील लोग इस संसार में मौन का किस प्रकार से आचरण किया करते हैं। हे प्रभु, इन पांच प्रश्नों का समाधान आप मेरे को
बताइए
क्या क्या पांच प्रश्न है भाई। मौन चाहिए नहीं चाहिए? क्योंकि आपने मौन की बहुत महत्व बताया है। तो कस्य एष मौन है, कस्य प्रयोजनस्य अर्थ, किस प्रयोजन के लिए यह मौन है। दूसरा, मौन दो प्रकार का है, एक वाणी का मौन, एक एकदम मन का मौन, ठीक, अंत मौन, भीतर से मौन, अंतकरण का मौन। इन दोनों मौन में कौन सा मौन उचित है, किस मौन की बात आप करते हो? हे प्रभु, उस मौन का स्वरूप आप मेरे से बताइए, मौन का स्वरूप क्या है, मौन के द्वारा विद्वान मौन को कैसे प्राप्त करता है, मौन रूपी साधना से, बाणी के संयम के द्वारा, इंद्रियों के संयम के द्वारा निर्विकल्प अवस्थिति की प्राप्ति कैसे होती है। इस मौन का अनुष्ठान विद्वान लोग इस संसार में किस प्रकार से किया करते हैं। हे प्रभु, ये पांच प्रश्न हैं, इन पांच प्रश्नों का मेरे को आप जवाब दीजिए। आप लोग तो विद्वान हैं ही, फिर भी सनत कुमार जी बताते हैं दूसरा श्लोक। यतो न वेदा मनसा सहनम अनुप्रविशन्ति ततः समौनम्। यतो न वेदा मनसा सहनम अनुप्रविशन्ति ततः समौनम्। यत्रोत्थितो वेद शब्दस्तथायम् सतन्मयत्वेन विभाति राजन्। यत्रोत्थितो वेद शब्दस्तथायम् सतन्मयत्वेन विभाति राजन्। यतो मनसा सह वेदा न अनुप्रविशन्ति, ये तो माने जिससे, मनसा सह मन के साथ है, इस परमात्मा में वेद भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि बताया गया, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, मन के साथ सारी इंद्रियां उस तत्व को जानने के लिए चलती हैं, लेकिन सब के सब निराश होकर के रिटर्न हो जाती हैं, वापस आ जाती हैं, उसको जानने में समर्थ हो ही नहीं सकती हैं। मनसा सह इंद्रियां, मनसा सह इंद्रियां एनम न अनुप्रवेश प्रविशन्ति, मन के साथ इंद्रियां इसको जानने में समर्थ, वेदा न जानने में समर्थ नहीं हो सकती हैं। ततः स मौनम, वह मौन है, ततः स मौनम, वह मौन है, मतलब आपका अपना स्वरूप ही मौन है। जिस स्वरूप को जानने के लिए इंद्रियां जाती हैं, उसका ज्ञान करने में समर्थ, इसके लिए आप लोग कथा सुने ही सुने हैं। अभी शिवरात्रि गई ना, हाँ, तो शिवरात्रि किस प्रयोजन से मनाई जाती है? शिवरात्रि दिन क्या विशेष हुआ है? शिव पार्वती का विवाह, और कुछ पता नहीं, मैंने पिछली बार बताया था, कई जन्म बताते हैं, कई विवाह होता है, विवाह में खूब दावत खाना चाहिए कि व्रत रहना चाहिए? शंकर पार्वती विवाह है तो दावत खाना चाहिए, व्रत रहना चाहिए? आप लोग व्रत रहते हो, जबकि खाना क्या चाहिए, क्या मसूद बंगाए, दावत नहीं खानी चाहिए? कहते हैं कि एक बार संवाद हुआ, मतलब संवाद में विवाद हो गया ब्रह्मा और विष्णु में, दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो छोटे लोगों की लड़ाइयां होवे ना, तो किसी के पास आकर के कोई न कोई समझौता करा देगा, प्रधान, सरपंच, विधायक, नेता, जज, कोई। और जब बगल लोगों की लड़ाइयां हो जाए तो उसको कौन समझौता करावे, बताओ। अब विवाद इतना उलझा कि दोनों लोग विद्वान अपने आप को मानने के लिए कोई तैयार होता नहीं, छोटा अपने आप को मानने के लिए कोई तैयार होता नहीं। तो दोनों के बीच में एक ज्योतिर्पुंज प्रकट हुआ। ये तो कथा सुना न, और ज्योतिर्पुंज प्रकट हुआ और एक आकाशवाणी हुई, जो इसके ओर छोर का पता कर लेगा वह महान है। तो ब्रह्मा जी तो बगे चालाक है, कहां गए? ऊपर गए। अब विष्णु भगवान सूक्ष्म रूप से नीचे गए। अगर 10,000 दिव्य, यहां का वर्ष नहीं, दिव्य वर्ष देवलोक का, ऊपर जाते रहे, नीचे जाते रहे, लेकिन किसी ने उस ओर छोर का पता कर नहीं पाए। अंत में निराश होकर के दोनों वापस आते हैं। चलो तो अलग बात है, ब्रह्मा जी ने झूठ बोला तो उनका एक सर काट लिया। पहले 5 सर थे ब्रह्मा जी के, फिर 4 बच्चे। लेकिन दोनों से एक कथा है, इस कथा का एक रूपक है, जो ज्योति स्वरूप परमात्मा है, यही आगे बताते हैं। तन्मयत्वेन विभात राजन, हे राजन, उसी में यह सारा संसार है, उसी से यह सारा संसार प्रकट है। तन्मयत्वेन, वही रूप है। तो जो संसार है, ओ, जो ज्योति स्वरूप परमात्मा है, उस परमात्मा को बुद्धि, बुद्धि माने ब्रह्मा, पाने का प्रयास किए, इन 1,000 साल तक घूमते रहे, इन बुद्धि के द्वारा भी उसको जान नहीं सके। चित्त माने विष्णु, चित्त माने कौन है? विष्णु। संस्कारों के द्वारा, ज्ञान के द्वारा उसको जानना चाहा, लेकिन उसको भी वो जान नहीं पाए। तो इंद्रियां मेरे भाई, इंद्रियों की एक बड़ी सीमा होती है। आंख के रूप को देख सकती है, निरूप वस्तु की पहचान आंख कर नहीं सकती है। कान शब्द को पहचान सकता है, रूप को नहीं देख सकता। जीवा रस को जान सकती है, लेकिन अन्य विषयों का ज्ञान नहीं। तो हर इंद्रियों की अपनी एक क्या है, सीमा है। अब परमात्मा रूप से रहित है, बताओ आंख देख सकती क्या? परमात्मा शब्द से रहित है, तो कान कैसे उसको जानेगा? परमात्मा क्या है, स्वाद से भी रहित है, गंध से रहित है, स्पर्श से रहित है। तो ये इंद्रियां अपनी सीमा में रह करके ही वस्तुओं का अवलोकन करती हैं। लेकिन ध्यान देना, जिसके द्वारा ये सब जाने जाते हैं, जिसके द्वारा इंद्रियां एन सर्वम भी जान आती, जिसके द्वारा सब कुछ जाना जाता है, वह ज्योति स्वरूप, जिसकी ज्योति से आंख रूप देखने में समर्थ होती है, जिसकी ज्योति से कान शब्द सुनने में समर्थ होता है, जिसकी ज्योति से, जिसके प्रकाश से जीवा रस लेने में समर्थ होती है, जिसकी ज्योति से, प्रकाश से तो इंद्री स्पर्श को जानने में समर्थ होती है, वह परम प्रकाश परमात्मा है, वही मौन है। उसमें कोई विक्षेप नहीं, वह परम क्या है, शांत है। जिसकी प्रकाश से, जिसकी सत्ता से अंतःकरण संकल्प विकल्प करने में सक्षम हो रहा है, जिसकी सत्ता से बुद्धि में निश्चयात्मक वृत्ति बनती है, वह परमात्मा मौन है। अब वो परमात्मा दिखे कैसे, बोलो भाई। अरे दिखेगा नहीं, बार बार कह रहा हूं, आप लोग भले कहो मैं देखा परमात्मा, लेकिन दिखने वाला परमात्मा नहीं है। ये जो परमात्मा दिख जाए ना तो जड़ बन जाएगा, जो देखने वाला वो परमात्मा है, जिसकी सत्ता से ये सब समर्थ हो रहे हैं भाई। फिर भी उसकी सत्ता तो है, उसकी सत्ता दिख नहीं सकती, उसकी सत्ता का अनुभव, एग्जिस्टेंस है। जैसे ही रूप दिखता नहीं दिखता भाई, एक किताब किस रंग की है, लाल रंग की है। कैसे देखा? आंख से देखा, आंख से देखा ना। लेकिन जिस आंख, तो आंख है आपके पास नहीं है, कैसे जाने आंख है? आपके पास आंख है, आपने कैसे जाना कि मेरे पास आंख है? अरे पुस्तक दिख रहा है, इससे सिद्ध हो रहा का आंख है। शब्द सुन रहा है, इससे सिद्ध हो रहा कान है, समग्र इंद्रिय है। तो अब आंख को देखने के लिए क्या दूसरी कोई आंख लाओगे क्या? कि भाई मेरे पास आंख है कि नहीं, देख के बताना। तो अरे रूप दिख रहा है, इसी से सिद्ध हो रहा है कि आंख है। आप बोल रहे हो, सुन रहे हो, सूंघ रहे हो, शरीर में कोई न कोई एक्टिविटीज, भोजन पच रहा है, श्वास चल रही है, इसी से सिद्ध हो रहा को परमात्मा है। तो उस परमात्मा को जानने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता है ही नहीं, वह तो परमात्मा स्वतः सिद्ध है और वही आप स्वयं हो, स्वयं सिद्ध आप हो। भाई आप आए हो कि नहीं आए हो? आपको देखने के लिए क्या चाहिए? आंख भी चाहिए और क्या चाहिए? प्रकाश भी चाहिए। अब मुझे देखने के लिए क्या चाहिए? मैं हूं या नहीं हूं क्या चाहिए? बोलो भाई, लाइट जला के देखो तो। अच्छा शीशा ले आओ, यदि मेरी परछाई बन रही तो मैं हूं, यदि परछाई नहीं बन रही तो मैं नहीं हूं। क्या ऐसा होगा क्या? सुना नहीं भाई? भाई देवे, हम अपनी पहचान परछाई देख के करते थे, मेरी परछाई बन रही तो मैं हूं, अब परछाई नहीं बन रही तो मैं। अब कोई बच्चा शैतान होवे और जिस शीशे को देख करके तुम अपना परिचय बताते थे, उस शीशे के पीछे जो पॉलिश होता है ना, उस पॉलिश को कोई हटा देवे तो अब फिर आप शीशा लेकर देखोगे तो कहोगे मेरी परछाई तो बन रही है, मैं नहीं हूं, मैं खो गया हूं, कहोगे क्या? अरे आप उल्टा बोलते हो, पता नहीं। मेला में आप गए हो नहीं कभी? खोए ही नहीं खोए मेला में? बचपन में खोए नहीं खोए हो तो मेला में क्या बोलते हो? खोया पाया वाला डिपार्टमेंट के पास है, एक बच्चा खो गया है, इसके माता पिता मेरी आवाज सुन रहे हैं तो अपने बच्चे को यहां से ले जाए। ये सही बोलते हैं गलत बोलते हैं? सही बोलते हैं। अरे बच्चा नहीं खोया है, मां बाप खो गए हैं। अरे बच्चे का तो पता है ना कि बच्चा इस स्टॉल पे है, उसका पता है, लेकिन खोया कौन है? मां बाप का पता नहीं है वो कहां खोए है। इसलिए कहना चाहिए एक बच्चे के मां बाप खो गए हैं, ये नहीं बोलना चाहिए बच्चा खो गया है। क्या बोलना चाहिए? बच्चे के मां बाप खो गए हैं। यदि उसके मां बाप को आवाज सुन रहे हैं तो अपने इस पाए हुए बच्चे को ले जाएं। बच्चा तो मिला मिलाया है, बच्चा कहीं गायब नहीं हुआ है। उसी प्रकार मेरे भाई, आप स्वयं सिद्ध हो, आप हो तो जगत की सत्ता सिद्ध होती है, और आप न हो तो जगत की कोई सत्ता सिद्ध होती नहीं। फिर भी हम अपने आप को न समझ करके अलग मानते हैं, अलग मान करके जगत का अधिष्ठान आप हो, जगत आपके ऊपर टिका है, लेकिन फिर भी हम ऐसा समझ नहीं पाते। तुम्हारा समझना ऐसे ही हो गया, जैसे एक उदाहरण है, सुना ही होगा कि एक व्यक्ति था आदिवासी जंगल में रहने वाला, जिसने कभी शीशा देखा नहीं था। उसका अपने बाप से बड़ा प्यार था, लेकिन बाप बेचारा मर गया तो बाप की कमी का उसको हर पल एहसास होता था। अब बाप को खोजता रहता था, शायद मेरे बाप कहीं मिल जाएं, कहीं मिल जाएं। एक दिन जंगल में गया, उसने एक शीशा देख लिया, शीशा मिल गया। और जैसे शीशा देखा तो उसमें एक तस्वीर, बस खुश हो गया, मेरा बाप मिल गया। और उस शीशे को घर में लाया, रख दिया, और जब भी उसको कोई दिक्कत आवे बाप के पास जाता था, कुछ बुदबुदाता था, उधर से बुदबुदाने की आवाज नहीं आती थी लेकिन बुदबुदाता हुआ दिखता था, और छिप छिप के बाप से मिलना शुरू कर दिया। एक दिन बीबी को शक हो गया कि छिप छिप करके किससे मिलता है, मेरे भाई बता दे, छिप छिप करके वो किससे मिलता है? जब वो कहीं शिकारी गया था जंगल उंगल में लकड़ी काटने, तो बीबी ने ताला खोला, देखा एक औरत बैठी हुई उसमें, बस उसका भी दिमाग खराब है। अब समझ में आया किसके पीछे पड़ा हुआ है पागल। तभी तो मैं सोचता था मेरे से बात क्यों नहीं करता है, गुपचुप इसी से बात करता रहता है। एक दिन देखा, दो दिन देखा, जब नहीं रहा गया तो सास के पास पहुंची, अम्मा वो बिगड़ गए हैं, अब हमसे प्यार ही नहीं करते, किसी और से प्यार करते हैं। तो कहा कौन है, तो ले आई इसे शीशा लेकर के, सास को दिखाया, ये देखो इससे प्यार करते हैं। तो सास ने अपनी तस्वीर देख ली, कहा बहुत चिंता न करो, ये जिसके प्यार में डूबा है ना 80 साल की बुढ़िया है, वो कभी न कभी मर जाएगी जल्दी। उसको भी पता नहीं था, वही हालत हम सबकी हो गई। सच बता रहा हूं, हम अपनी पहचान बाहर के लोगों से करवाना चाहते हैं। बाहर के व्यक्तियों से मेरी अपनी पहचान होती है, शीशा देख के मेरी पहचान होगी। लेकिन भाई आपको आपकी अपनी पहचान के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता है नहीं, आप स्वयं सिद्ध परमात्मा हैं। शरीर से आपकी पहचान नहीं है, शब्द से पहचान नहीं है, रस गंध से पहचान नहीं है, तो जो स्वयं सिद्ध परमात्मा है वही आप हो। उस परमात्मा को और कैसे जाने, उस परमात्मा का अनुभव कैसे करें, इस पे चर्चा हम लोग। भाई कल संडे है, मुंबई वाले छुट्टी मनाए, तो आप जानो, लेकिन जो सोया सो खोया। कल परमात्मा की पहचान कराई जाएगी, ध्यान देना थोड़ा। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।